नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निवास पर आज सुबह साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान उन पर हुए हमले की निंदा की है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल श्रीमती गुप्ता की हालत स्थिर है।
सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रहकर लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया है। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है।
दिल्ली कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह ने भी मुख्यमंत्री पर हुए हमले की निंदा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी हमले की निंदा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद और विरोध की तो जगह है लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन आज नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के नेताओं से श्री राधाकृष्णन का परिचय करवाया और उन्हें बधाई दी। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों के सांसदों से श्री राधाकृष्णन को सर्वसम्मति से चुनने की अपील की है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरे विपक्ष के साथियों को भी विशेष करके अपील किया है कि श्री सीपी राधाकृष्णन जी का सर्वसम्मति से समर्थन करें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी सबसे बात भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी।
विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। इस पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। भारत और चीन सीधी उड़ान सेवा बहाल करने तथा हवाई सेवा समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमत हो गए हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के बीच कल नई दिल्ली में इस पर सहमति बनी। बैठक में दोनों पक्षों ने साझा हितों के आपसी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सकारात्मक तथा रचनात्मक चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और चीन के बीच स्थिर तथा रचनात्मक संबंध से क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर शांति और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने भारत चीन सीमा पर शांति और सद्भाव बनाए रखने तथा सीमा विवाद के परस्पर स्वीकार्य समाधान पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कल चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ नई दिल्ली में बैठक की। चीन के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग का संदेश और तियानचिन में प्रस्तावित शंघाई शिखर मेलन के लिए निमंत्रण सौंपा। गृहमंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करेंगे। इसका उद्देश्य 2019 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित करना है। श्री शाह 130वां संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक भी पेश कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पेश करेंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को ऑनलाइन गेम के दुष्प्रभावों से बचाना है। मुंबई में कई दिनों से लगातार तेज बारिश के बाद आज हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और ऑरेंज अलर्ट और पुणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। लोकल ट्रेनों और बसों की आवाजाही अब सामान्य हो गई है। रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पनवेल नगर निगम ने इस क्षेत्र के स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल भारत के रुष्मिका सहगल ने स्वर्ण पदक जीता। ये इस प्रतियोगिता में भारत की व्यक्तिगत स्पर्धा में तीसरा पदक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।